پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. ہمارے پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان بھر سے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی یا ٹیپٹا کے سینئر عہدیداروں کے ایک گروپ کے کچھ نمائندہ عہدیدار, جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کمیونٹی کالج ایڈمنسٹریشن یا سی سی اے سے متعلق 6 ہفتوں کے ایک ٹریننگ کورس پر امریکہ کے دورے پر ہیں. ہمارے مہمان ہیں سندھ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر اور اس گروپ کے لیڈر ڈاکٹر مسرور احمد. ہمارے مہمان ہیں پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے جنرل مینیجر محمد اختر عباس. خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر محمد اللہ. بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ مقبول احمد. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے رکن اور پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال محمد جاوید اقبال. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہمارے سبھی مہمان اس وقت موجود ہیں امریکی ریاست میساچوسٹس سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر مسرور احمد سے, جو NED یونیورسٹی اینڈ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلیم یافتہ ایک سول انجینئر ہیں, سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کراچی کے پرنسپل اور چیئرمین, اور سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن رہ چکے ہیں اور اس وقت اس کے اکیڈیمکس کے ڈائریکٹر ہیں. اپنی 27 سالہ سروس کے دوران اس سیکٹر میں متعدد پروجیکٹس تیار اور مکمل کر چکے ہیں اور 200 سے زیادہ ٹیچرس کو ٹریننگ دے چکے ہیں اور 50 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی سیمینارز اور ورک شاپس میں اتھارٹی کی نمائندگی کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر مسرور احمد صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کس پروگرام کے تحت یہاں پر امریکہ کے دورے پر ہیں, اور یہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ہے یہ کیسا ادارہ ہے جس کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر ایک ٹریننگ کورس کر رہے ہیں؟
کمیونٹی کالج ایڈمنسٹریٹر پروگرام ہے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسپانسر کیا ہے, اور جو ہے یہ بیسیکلی اسٹڈی ہے کمیونٹی کالجز جو یو ایس اے میں اس کے سسٹم کی, اور اس ہم جو ہے 22 پرسنس ہیں تمام ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان سے اس اسٹڈی پروگرام میں یہاں وزٹ کر رہے ہیں, اور یہ 6 ویک کا جو ہے ہمارا ایک طرح ٹریننگ پروگرام ہے, فیلوشپ ٹریننگ.
تو کیا یہ پہلا پروگرام ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد بھی ہونے ہیں؟
اس سے پہلے ایک گروپ فال میں آ چکا ہے اور یہ ہمارا دوسرا گروپ ہے جو کہ ہے, اور اس کے بعد ایک نیکسٹ گروپ بھی آئے گا. اس کی کنٹینیوشن میں کچھ یہاں سے یو ایس اے سے جو ہے کمیونٹی کالجز کے پروفیسرز اور پریزیڈنٹس ہیں وہ وزٹ کریں گے اس کی کنٹینیوشن میں پاکستان کا.
اچھا, تو یہ ایک طرح سے یہ ایکسچینج پروگرام کے تحت آپ لوگ یہاں پر ہیں؟
جی جی جی.
اچھا, तो ये कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये है या दुनिया भर के लिए ये प्रोग्राम है अमेरिका का?
ये देखिए, फिलहाल तो क्योंकि ये बेसिकली होता था जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, उसकी कन्वर्जन उन्होंने की है और उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में भी काफ़ी कुछ टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हो रहा है और यहाँ पर भी कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम जो है वो रिवैम्प हो रहा है और वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कुछ कॉलेज जो है स्टार्ट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम था बोथ साइड पे कि हमें भी एक्सपोजर हो कि कम्युनिटी कॉलेज का सिस्टम किस तरह काम करता है, यहाँ पे उनकी टेक जो एजुकेशन किस तरह फ्लेक्सिबल है और इस तरह वो भी पाकिस्तान के सिस्टम को स्टडी करें। और तो ये इस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम है।
तो इसके लिए कोई सिलेक्शन का कोई मायार था कि इस ग्रुप को सिलेक्ट कैसे किया गया?
हाँ बिल्कुल, इस तरह हुआ था कि जो है एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी नॉमिनेशन तमाम टेपकास्ट से, क्योंकि बेसिकली ये टेपकास्ट के लोगों के लिए प्रोग्राम था और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम था। तो नॉमिनेशन इन्वाइट किए गए थे तमाम टेपकास्ट से और उसके बाद नॉमिनेशन रिसीव होने के बाद एक बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस था जिसमें इंटरव्यू लोग किए गए, सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू उसके बाद हुआ, जो एक कमेटी थी जो कि उसने इंटरव्यू किया इस्लामाबाद में और जब इन लोगों के फाइनल सिलेक्शन हो गए तो फिर ये लोग यहाँ पे।
अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं?
एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे सारे, प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट के और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहबान हैं और डायरेक्टर्स हैं चैप्टर्स के।
अच्छा, क्या आपने फ़र्क पाया पाकिस्तान के वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन में और यहाँ अमेरिका के टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में?
देखिए, हमने कम्युनिटी कॉलेज के साथ कुछ वोकेशनल स्कूल्स का भी विजिट किया है। जो मेजर जो डिफरेंस है हमारे यहाँ एजुकेशन का और पाकिस्तान में एजुकेशन का, हमारे यहाँ एजुकेशन जो है बहुत ही रिजिड है और हमारे ये प्रोग्राम जो है एजुकेशन के प्रोग्राम जो है वो बहुत ही रिजिड है। यहाँ पर जनरल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि कोई भी किसी भी एज पर किसी भी स्टेज पर जाके वो वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकता है और साथ में वो अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो और अपने कोर्सेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और जबकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक रिजिड प्रोग्राम होता है, डिज़ाइन प्रोग्राम होता है, उसी कोर्स में बच्चे को एडमिशन लेना होता है और उसको कम्प्लीट करना होता है।
तो ये जो आप कहते हैं कि कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, तो इसमें आपको क्या एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके सिखा रहे हैं?
नहीं, उसमें ओवरऑल तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं और हमें मुख्तलिफ कम्युनिटी कॉलेज के जो है स्टडी विजिट भी कराए गए हैं और लेक्चर वगैरह भी हो रहे हैं, उसमें साथ में कम्युनिटी कॉलेज के जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट किस तरह फ्लेक्सिबल हैं उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी गई मुख्तलिफ लेक्चर्स में। साथ में हम जो है उनके सिस्टम को भी विजिट कर रहे हैं कि किस तरह उनका एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह उनका क्रेडिट ट्रांसफर प्रोसेस है और किस तरह उनकी एजुकेशन जो है फ्लेक्सिबल है।
तो आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त कितने टेक्निकल इदारे हैं एजुकेशन के और उनमें कितने स्टूडेंट्स इस वक्त तालीम और तरबियत पा रहे हैं?
देखिए, ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट शो करता है तो वो जो पब्लिक सेक्टर में अराउंड 1000 के करीब हैं इस तीन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के इदारे और तकरीबन उनका एनरोलमेंट जो है वो 5 लाख के करीब है जो कि शो करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो है वो शो करती है।
अच्छा।
बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इदारे हैं। मैं पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से बात करूंगा, बाकी मेरे दोस्त जो है वो अपने अपने प्रोविंसेस के हवाले से बात करेंगे।
जी जी बिल्कुल।
वहाँ पे कितने हैं? तो हमारे यहाँ सिंध में जो है वो 251 टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन हैं और हमारा जो एनरोलमेंट है अराउंड 40,000 इनटेक कैपेसिटी, जो एनुअल इनटेक कैपेसिटी कहते हैं उसकी, वो 40,000 के करीब है, 42-43,000 के करीब जो है पास आउट होते हैं बच्चे
हर साल। अच्छा,
हमारे यहाँ सिंध की बात कर,
ये जो टेक्निकल एजुकेशन इदारे हैं टेक्निकल एजुकेशन के, अब उसमें आपने वोकेशनल एजुकेशन को भी मिक्स कर दिया है।
एक बार ये था कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग की, पहले टेक्निकल एजुकेशन के इदारे जो है तमाम पाकिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोविंसेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट रन करते थे और वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे भी कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट रन करता था, बाकी लेबर मैन पावर डिपार्टमेंट जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे रन किया करता था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करते थे, गवर्नमेंट डिवीजन की सोशल वेलफेयर था। अब हुआ यह कि रिस्ट्रक्चरिंग टैबलेट की पाकिस्तान में हुई है क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रियलाइज किया इसकी इंपॉर्टेंस को टैबलेट की, तो तमाम प्रोविंसेस में जो है टैप्टाज बन गई हैं सबसे पहले जो टैफ्टा बनी थी वो पंजाब प्रोविंस में बनी थी, और उसके बाद फिर सिंध में, और उसके बाद केटीके में और बलूचिस्तान में भी, और अब जो है गिलगित बलूचिस्तान में भी जो है वो टैफ्टा फॉर्म हो गए।
अच्छा, जो इस अथॉरिटी के तहत ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें सिर्फ इसमें कौन कौन से पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं?
देखते हैं कि जिसमें बेसिकली जो है ये टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है वो तीन हिस्सों में या तीन स्ट्रीम में डिवाइडेड है। एक तो उसमें जो है वो पॉलिटेक्निक है जो कि 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करते हैं। उसके बाद दूसरे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं, जो कि 3 महीने से लेके और साल तक के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और जिसको यहाँ अमेरिका में नॉन क्रेडिट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तीसरा जो हमारा जो है वो बिजनेस एजुकेशन जो है वो ऑफर करते हैं, जिसमें कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस कमर्शियल एजुकेशन जैसे हैं बने हुए, तो वो डिप्लोमा इन कॉमर्स ऑफर करते हैं। तो 3 कैटेगरीज में ये टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है डिवाइडेड।
और यहाँ अमरीका में किस तरह का सिस्टम है?
देखिए, अमेरिका में जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं मेनली जो हमने देखा है वो कम्युनिटी कॉलेजेस, एक आध के अलावा जिसने हमने विजिट किया, अभी 6 करीब विजिट किए, तो उसमें एक कम्युनिटी कॉलेज है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, लेकिन बाकी दूसरे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं बहुत सारे 40-50 एरियाज में जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा ह्यूमैनिटीज हैं बाकी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ वोकेशनल कुछ हाई स्कूल जो हमने विजिट किए हैं 3, वो है वोकेशनल हाई स्कूल जो कि प्योरली जो है ग्रेड 10 तक जो है या और वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं।
वरना ये कि हर कॉलेज में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं?
हमारे यहाँ जो है प्योरली टेक्निकल एजुकेशन ही होती है पॉलिटेक्निक वगैरह में, और लेकिन यहाँ कम्युनिटी कॉलेज ऐसा नहीं है, जनरल एजुकेशन की ही बेसिकली दे रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या कहें ह्यूमैनिटीज है, और नर्सिंग का यहाँ का प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, हमने जगह जगह देखा है यहाँ पे जो नर्सिंग के एरिए
में टेक्निकल एजुकेशन
बिल्कुल कम्युनिटी कॉलेज ऑफर कर रहे हैं नर्सिंग के प्रोग्राम, तो वो काफी पॉपुलर है यहाँ पे।
तो डॉक्टर मसरूर साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू अभी जारी है लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू में अपने अगले मेहमान को शामिल करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं अमेरिका के दौरे पर आए पाकिस्तान भर से टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी या टेप्टा के सीनियर अहदेदारों के एक ग्रुप के कुछ नुमाइंदा अहदेदार, जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या CCA से मुतालिक 6 हफ्तों के एक ट्रेनिंग कोर्स पर अमेरिका के दौरे पर हैं। हमारे मेहमान हैं सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर और इस ग्रुप के लीडर डॉक्टर मसरूर अहमद। हमारे मेहमान हैं पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के जनरल मैनेजर मोहम्मद अख्तर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर मोहम्मद दुल्ला। बलोचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग मकबूल अहमद। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के रुकन और प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल मोहम्मद जावेद इकबाल। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahezindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameel.voaurdu। हमारे सभी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स से टेलीफोन पर हमारे साथ। हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर मोहम्मद दुल्ला को। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद दुल्ला साहब, क्या हाल हैं?
ठीक ठाक।
कुछ बताइए कि आपका ये जो दौरा है कैसा जा रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं इस दौरे के दौरान आप?
बहुत अच्छा जा रहा है और इधर से हम बहुत कुछ सीख कर जो है अपने इदारों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली इसका जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट लिंकेज जो है उसके क्रेडिट जो है ट्रांसफर है डुअल वेशन है, ये जो है ये हमारे लिए बहुत तारीफ है।
आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है तो वहाँ पर पाकिस्तान की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी?
हाँ ये बिल्कुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी अभी मार्च से उसने काम शुरू किया हुआ है और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी और इसको हम नौशहरा में बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में।
अच्छा, तो इस यूनिवर्सिटी में क्या मास्टर्स की डिग्री मिलेगी जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलती?
इस यूनिवर्सिटी में पहले फेज में 4 प्रोग्राम होंगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के, उस साथ साथ मास्टर प्रोग्राम भी होंगे जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल होगा। उसके बाद डॉक्टरेट की वो जो है वो शुरू होगी आफ्टर 2 ईयर।
तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में अभी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो टेक्नोलॉजी की कायम हुई है?
यस यस।
और आपका भी इसके कयाम में एक रोल रहा है, कुछ उसका जिक्र कीजिए।
मैं असल में पहले इस यूनिवर्सिटी का, ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन के साथ ही मैं उसका कोऑर्डिनेटर होता था। उसके जो PC2 थी फिजिबिलिटी वो हमने बनाई थी, वो वाइस चांसलर थे हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर के। उस फिजिबिलिटी की बुनियाद पर उसका PC1 तैयार हो गया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, फिर उसकी लेजिस्लेशन भी प्रोविंशियल असेंबली ने जो है बिल उसका पास कर दिया। अब वो चार्टर यूनिवर्सिटी है और उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, उसके साथ दूसरा टीम भी है और मार्च से उन्होंने बाकायदा काम शुरू किया हुआ है।
तो ये जो यूनिवर्सिटी होगी इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ही आएंगे या आ रहे हैं दाखिला लेंगे, या दूसरे आम कॉलेजों के तलबा तालिबात भी इसमें दाखिल हो सकते हैं, और क्या ये को एजुकेशन है?
ये जो यूनिवर्सिटी है ये प्योरली टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो ग्रेजुएट होंगे जो 3 ईयर डिप्लोमा करेंगे जिसको हम टेक्नीशियन कहते हैं, पॉलिटेक्निक के ग्रेजुएट या 3 ईयर पोस्ट मेट्रिक डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे वो इसमें दाखिल होंगे। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के 80% कोटा है, बाकी सूबों और स्टेट के लिए भी, आजाद कश्मीर के लिए भी हमने उसमें प्रोविजन रखी हुई है एडमिशन में। तो ये टेक्नीशियन एजुकेशन, ये जो हमारे पैदावार है पॉलिटेक्निक के, वो उसी में दाखिला लेंगे।
अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये कि उनको, उनकी अब जो लेवल है एजुकेशन का वो हाई हो जाएगा, वो मास्टर्स की उनको डिग्री मिलेगी।
हाँ, तो मास्टर सिर्फ नहीं, वो डॉक्टरेट भी करेंगे और उससे आगे भी जाएंगे।
अच्छा वाह,
तो हाँ ये तो अभी उसका 3 billion का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है।
अच्छा अच्छा, तो अब आप जब यहाँ पर आए तो आपने यहाँ पर भी टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ देखी? अमेरिका में है ऐसी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज?
तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो सारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में कल भी गए थे उधर, उसकी मैकेनिकल के हैं, केमिकल के हैं, वो इधर हमने इंजीनियरिंग का ज्यादा वो देखा है।
यानी उसका नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं पॉलिटेक्निक, तो उन सब की खपत आप लोगों ने कहा कि उनको आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी का वजूद जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा,
ये तो हम अपने रिकमेंडेशन जब हम जाएंगे तो उधर हम रिपोर्ट पेश करेंगे और उसी रिपोर्ट पे हम इधर से जो अच्छी चीजें हैं वो रिकमेंडेशन हम गवर्नमेंट को देंगे।
अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस पर अमल होना मुमकिन है? आजकल ऐसा माहौल है पाकिस्तान में कि आपकी जो बात है, जो आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको सुना जाएगा और उन पर अमल भी होगा?
हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें तो सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, किसी एक सूबे की नहीं है, और हमारा करिकुलर जो है वो जो है नेशनल लेवल का बनता है।
जो एक दफा बन जाता है वो सारे इदारों में वही ना?
बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, तो क्या कोई खास यहाँ के आइडियाज जो आप रिकमेंड करेंगे अमेरिका में या जो कुछ आपने देखा?
मैं तो स्पेशली इसका जो इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री लिंकेजेस है, उसके जो वर्क स्टेशन है, मशीनरी इक्विपमेंट है लेटेस्ट, और वो जो क्लास साइज उसका है, और टीचर के जो क्वालिफिकेशन इधर है सिक्योरिटी के, मतलब ये सबसे अच्छी और इफेक्टिव बातें हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे।
और आपने क्या सबसे बड़ा क्या फर्क देखा अमरीकी वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में?
बस वो तो ये है कि हम तो एक सप्लाई ड्रिवन लोग हैं ना, हमारा तो ना हम पहले गैप एनालिसिस करते हैं ना कोई सर्वे करते हैं, बस वो हमारा सिस्टम आप इस तरह कह रहे हैं कि रिजिड है, जो कोर्सेज पहले से गवर्नमेंट अप्रूव करे बस ए से लेकर जी तक आपने वो पढ़ाने हैं, इसके अलावा इसमें आप चेंज नहीं ला सकते, वो फ्लेक्सिबल सिस्टम इतना नहीं है। इधर का सिस्टम जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप आगे पीछे जा सकते हैं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी सब कुछ इधर है।
तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है इन इदारों के लिए?
پاکستان میں تو بہت ساری کمی ہے, ریسورسز کم ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے صوبے میں اسپیشلی دہشت گردی کی وجہ سے جو خوف ہے اور انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہے نا, اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس کو آپ کی بجٹ اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس آپ کے؟
ہاں وہ تو ہے, ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انہانس کرنا ہے تو آپ نے لیٹسٹ اکوپمنٹ مشینری یہ سب کچھ آپ نے وہ سپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے تو فنڈنگ ضروری ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس میں ضرور صوبوں کو وہ پورا شیئر دے گا,
تو اس کی بہت ضرورت ہے. اور آپ وہاں جا کر اپنی ریکمنڈیشنز جب دیں گے تو اس میں یہ چیز بھی رکھیں گے؟
بالکل بالکل.
اچھا ڈاکٹر محمد اللہ صاحب, یہ آج کل تو بڑی آن لائن ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, تو کیا آپ اپنے ادارے میں خاص طور پر آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو یا جو گھر میں بیٹھ کر ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا چاہیں آن لائن, ان کو یہ سہولت فراہم کریں؟
یہ ادھر جو امریکہ کی ایجوکیشن کی جو بیوٹی ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا آن لائن کی, یہ تو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں اور ہم اپنے اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, لیکن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں تو بالکل ہوگی.
لیکن اس وقت جو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہیں, جو دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پر اس طرف کوئی توجہ ہے؟
ابھی تک نہیں ہے. ساری
خواتین کا آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں خواتین کا ریشو کیسا تھا
ادھر؟ تو میرے خیال میں جو ادارے دیکھ رہا ہوں نا جہاں پر ہم گئے ہیں, مجھے فیمیل اسٹوڈینٹ بہت نظر آتے ہیں اس کمپیئر ٹو میل.
اور پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ریشو اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟
نہیں, ہمارے تو میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کروں تو ہمارے کوئی دو پولی ٹیکنک ادارے ہیں, اس میں ٹوٹل انرولمنٹ 150 بھی نہیں ہوگی.
بے حد شکریہ محمد اللہ صاحب, آپ نے خیبر پختونخوا کی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کی, اور یہاں جو آپ کا دورہ رہا اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ یہاں سے آپ کیا کچھ لے کر جا رہے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کا یہ دورہ کس طرح فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ. اور ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم گفتگو میں اپنے اگلے مہمان کو شامل کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہیں زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان بھر سے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی یا ٹیپٹا کے سینئر عہدیداروں کے ایک گروپ کے کچھ نمائندہ عہدیدار, جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کمیونٹی کالج ایڈمنسٹریشن یا سی سی اے سے متعلق 6 ہفتوں کے ایک ٹریننگ کورس پر امریکہ کے دورے پر ہیں. ہمارے مہمان ہیں سن ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر اور اس گروپ کے لیڈر ڈاکٹر مسرور احمد. ہمارے مہمان ہیں پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے جنرل مینیجر محمد اختر عباس. خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر محمد اللہ. بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ مقبول احمد. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے رکن اور پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال محمد جاوید اقبال. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہمارے سبھی مہمان اس وقت موجود ہیں امریکی ریاست میساچوسٹ سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. اور اب ہم گفتگو میں شامل کریں گے بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ مقبول احمد کو, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر. السلام علیکم مقبول احمد صاحب.
وعلیکم السلام میڈم.
بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے پروگرام ہردم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے کچھ وقت نکالا. آپ اس وقت بلوچستان میں قائم اس اتھارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, کچھ بتائیے کہ آپ نے اب تک ایسا کیا کچھ نیا سیکھا جس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جا کر آپ خاص طور پر بلوچستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ کے شعبے میں بہتری لا سکیں گے؟
मैडम सबसे बड़ी बात तो हमारे पास जो यूथ बल है ना वो हमारे एक बहुत पॉजिटिव एक साइन है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ पर हमने ये चीज देखी कि मतलब यहाँ के इनका इशू हो रहा है कि मतलब यूथ का इनका कमी है, वहाँ पर यूथ है फैसिलिटीज नहीं है. मतलब मैं गवर्नमेंट को कोशिश करूंगा कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग वो करें तो उससे मतलब हम यूथ को पॉजिटिव, शायद आप बलूचिस्तान के हालात से ज्यादा वाकिफ हैं कि बलूचिस्तान के हालात इस टाइम कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग अलगी पसंद ही चाहते हैं, तो उस यूथ को कन्वर्ट करने के लिए तो हमें उन्हीं के मतलब कम्युनिटीज में जाकर हमें सेंटर्स खोलने पड़ेंगे ताकि उनको उस तरह के हम लोग इंडल्ज कर सके कि वो पॉजिटिव उसकी तरफ आ सके एजुकेशन के जरिए, मोस्टली टेक्निकल एजुकेशन. और यहाँ से मैं जो हमने सीखा है कि मतलब जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज आप स्टूडेंट्स को देंगे तो उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे.
तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की, कितने इदारे हैं और उनमें कितने तलबा और तालिबात तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं?
जी मैडम, अभी तो मतलब हमारा बलूचिस्तान टैफ्टा जो है ना वो सबसे लेट मतलब पाकिस्तान में बना है. हमारे टैफ्टा को ऑलमोस्ट एक ही साल हुआ है अभी तक. तो हमारे चार अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, डायरेक्टरेट ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग है और इंडस्ट्रीज है. और इन ऑलमोस्ट इन सब की अगर आप एनरोलमेंट देखें तो 5000 इनकी एनरोलमेंट है पर ईयर. और मोस्टली जो हमारे कुछ इदारे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो बेस्ड इन क्वेटा है. तो दूर दराज के इलाकों में हमारे इतनी मतलब एक्सेस नहीं है टेक्निकल एजुकेशन को. बजायर मतलब पॉलिटेक्निक्स तो हमारे टोटल 6 ही हैं और उनकी भी एनरोलमेंट बहुत ही कम है. बलूचिस्तान का स्टैटिस्टिक्स अगर आप उठा के देख लें मतलब टेक्निकल एजुकेशन में सिर्फ 5% एनरोलमेंट है. जैसे ही बच्चे मेट्रिकुलेट करके वो पास आउट होते हैं तो मोस्टली वो जाते हैं उसकी तरफ जनरल एजुकेशन की तरफ. तो टेक्निकल एजुकेशन में कम है, तो इस एनरोलमेंट को कम्युनिटी में सेंस उजागर करना है कि वो इस तरफ ज्यादा आए.
तो कौन उजागर करेगा?
अथॉरिटी अभी बनी है, अभी मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को मतलब एक पेज पर हम लोग ला रहे हैं. तो इसमें थोड़े से मतलब मुश्किलात हैं कि मतलब पहले सारे स्टेक होल्डर एक ही पेज पे हो जाए ताकि मतलब जो भी मतलब टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल से रिलेटेड मतलब बंदे काम कर रहे हैं आइसोलेशन में उन सबको मतलब एक ही पेज. गवर्नमेंट मतलब इस चीज को पॉलिसी मेकिंग के जरिए ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है.
और इसके गवर्नमेंट के अलावा कोई प्राइवेट इदारे भी हैं टेक्निकल एजुकेशन के बलूचिस्तान में?
नहीं, ये बहुत ही छोटे लेवल पर है जो बहुत ही ट्रेडिशनल कोर्सेज करवाते हैं. बड़े लेवल पर कोई भी नहीं है, मतलब आप बलूचिस्तान में कोई भी नहीं है.
तो लेकिन बलूचिस्तान में जो टेक्निकल एजुकेशन के अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है?
वो भी है, मतलब ऑलमोस्ट 33 मतलब टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है और सोशल वेलफेयर के भी 32 इंस्टीट्यूट्स हैं. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बहुत ज्यादा है, वो तकरीबन 140 के करीब है. लेकिन वो टोटल सारे 2 ही ट्रेड्स हमारे सारे वो मतलब ड्रेस मेकिंग और एम्ब्रॉयडरी पर भी काम कर रहे हैं. उससे मतलब यूथ को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग नहीं जा पा रहे हैं. तो ये इश्यूज है, कुछ ऐसे ट्रेड्स इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जा सके. क्योंकि इंडस्ट्रीज आपको पता है बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज का बहुत ही फुकदान है. सिर्फ हमारा एक ही इंडस्ट्रियल स्टेट है वो अब चौकी है, उसका जो वर्क फोर्स है वो ज्यादातर कराची ही कैटर कर पा रहा है. तो हमारा यूथ मतलब इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है अपने इंडस्ट्रियल स्टेट्स में.
वसाइल भी जाहिर है बलूचिस्तान में आप समझते हैं कि दूसरे सूबों के निस्बत कम है इस शोबे में?
जी हाँ, वसाइल बहुत कम है मैडम. वसाइल क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं यही कह रहा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला है. हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट मशीनरी इक्विपमेंट उस लेवल का नहीं है कि मतलब हम इंस्टीट्यूट मतलब स्टूडेंट्स को बनाकर मतलब अपनी फैक्ट्रीज में वो करवा सके. और एक तो लैक है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट लिंकेज का कि इंडस्ट्री मतलब हमसे मतलब वो डिमांड सप्लाई गैप फुलफिल नहीं हो रहा कि इंडस्ट्री के जो डिमांड है ना उसको हम लोग उसके लेवल पर जाके कैटर नहीं कर पा रहे. इसी वजह से गवर्नमेंट का ज्यादा रोल, ये एक्सपेंसिव फिनोमेना है टेक्निकल एजुकेशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा अपना रोल अदा करना पड़ेगा.
और आपका ये जो दौरा है, आपने आपने ऐसा क्या सीखा है और आप क्या समझते हैं कि आप अब जो जाकर रिकमेंडेशन देंगे वो किसको देंगे जाकर?
मैडम डायरेक्टली हमारे जो ट्रेवटा की अथॉरिटी है वो हमारे सीएम साहब ही है. तो सीएम साहब को हम लोग ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप मतलब सबसे पहले तो मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं. स्टूडेंट्स आने लगेंगे पॉलिटेक्निक्स में, हमारे डिप्लोमा लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब इस लेवल पर हम लोग बना सके ताकि वो या तो एक हायर एजुकेशन की तरफ जा सके या तो फिर इंडस्ट्रीज को वो कर सके. तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि हम लोगों को सबसे पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें और स्टूडेंट्स को कम्युनिटी को अवेयर कर दें. ये दोनों जब पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगे तो उस पर इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू होंगी और लोग एम्प्लॉयबल भी होंगे. और लोग मतलब जनरल एजुकेशन की तरफ बहुत जा रहे हैं. इस स्ट्रीम को अभी तक मतलब हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि मतलब ये जो स्ट्रीम है ये, लेकिन इसमें भी लोगों को आना बहुत जरूरी है. और इसी की वजह से देखें बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कम्युनिटी को भी ये वो करना पड़ेगा, मतलब पेरेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ के लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि मतलब सिर्फ डॉक्टर, क्योंकि मतलब एक फिनोमेना हम लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे बेहतर है, हमारी कम्युनिटी में ये समझा जाता है। तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना नहीं, बाकी उसके बरक्स भी मतलब हम लोगों ने इसको मतलब एक ऐसा शोभा पेश करना है कि ब्लू कॉलर जॉब नहीं है कि मतलब आप अगर प्लम्बर बन जाते हैं या आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं तो आप एक डॉक्टर से या इंजीनियर से कम होते हैं, आप भी मतलब कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस चीज को मतलब ज्यादा उजागर करने की जरूरत।
जिसका एप्टीट्यूड इस तरफ है, टेक्निकल साइड पर है, वो अगर टेक्निकल साइड पर आएगा तो वो बहुत आगे तक जाएगा। और किसी भी काम को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है अमेरिका में आपने देखा होगा कि एक प्लम्बर की भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसी डॉक्टर या इंजीनियर की है।
बिल्कुल मैडम, एब्सोल्युटली ये बात है।
असल चीज है कि मेहनत की कदर, जो आदमी अपने हाथ से मेहनत करके कमा रहा है वो काबिल इज्जत है।
यहाँ रख के मैंने एक चीज देखी कि ये लोग कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और हम लोग बजाते वहाँ पाकिस्तान हम लोग सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, हम लोग अपने लिए काम करते हैं, तो कम्युनिटी को मतलब लेके चलना पड़ेगा, कम्युनिटी की भी वो होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, तब जाके ये सेक्टर स्ट्रेंथन होगा।
बेहद शुक्रिया। बलोचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग मकबूल अहमद साहब, आपने बड़ी तफसील से बात की अपने दौरे की और ये बताया हमारे सुनने वालों को कि बलोचिस्तान में इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग कैसी जा रही है, और यहाँ अमरीका से जो कुछ आपने सीखा अपने दौरे के दौरान उसको आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपने उन इदारों के लिए जहाँ टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है बलोचिस्तान में खासतौर पर, ऐसे मशवरे और ऐसी रिकमेंडेशंस देंगे जो उनके लिए कारगर होंगी। बेहद शुक्रिया। और अब शरीक गुफ्तगु होंगे टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब के सर्विस सेंटर्स के जनरल मैनेजर अख्तर अब्बास, जो इस वक्त मौजूद हैं मैसाचुसेट्स से टेलीफोन पर हमारे साथ। अख्तर अब्बास साहब, कुछ बताइए कि आपने ऐसा क्या नया सीखा कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ अमेरिका में, जो आप समझते हैं कि पंजाब के टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है।
तो मैं आपको गुजारिश इतनी करूंगा कि इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं कि मैं सबसे पहले तो यूएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये एक ना ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम का आगाज किया। और दूसरी बात ये है कि टेबटा पंजाब जो है ना, ये एक पायनियर टीबेट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1999 में पहली दफा पंजाब में ये टेबटा बना था, जिसमें ये टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग बनाने प्रोवाइड करने वाले इदारों को अंडर वन अम्ब्रेला किया गया था। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव था शहबाज शरीफ का एट दैट टाइम। फिर उसके बाद इसी की रोशनी में बाद में सिंध में टेपटा बनाया गया, फिर केपीके में बनाया गया, फिर बलूचिस्तान में बनाया गया। और ये जो टेक्निकल एजुकेशन है ना, ये हमारा फ्यूचर जो है ना पाकिस्तान का, इसके साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक है, क्योंकि हमारा जो यूथ बल जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है ना वो बिलो द एज ऑफ 30, और उसको एड्रेस करने के लिए उनको इम्प्लॉयबल स्किल्स जो देनी है ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने यूथ को रोजगार दे सकें, उनको लोकल भी जॉब्स मिले और उनकी उस स्किल्ड मैन पावर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें।
तो
और ये जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं ये अमेरिका में, ये सिस्टम भी हमारे से मिलता जुलता है, ये भी इसी तरह की एक ये टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमारी बड़ी आंखें खुली हैं कि ये सिस्टम देख के कि हम इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं और इसमें कैसे हम अपने सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। और मेरे बाकी साथियों ने काफी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन एक पॉइंट जिससे मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, जिसको आई विल ट्राई रेप्लिकेट दैट, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी कैरियर काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। उनको दाखले से लेके उस वक्त उनको गाइड करना शुरू किया जाता है और उनकी नौकरी लगवाने तक उनकी हेल्प की जाती है, और उन बच्चों को ऐसे डील करते हैं जैसे अपने बेटे अपने बच्चे को डील किया जाता है। तो ये उन बच्चों को इस तरीके से डील करें, मैंने बल्कि अपना एक्शन प्लान भी यही दिया है कि हम इसको रेप्लीकेट करेंगे वहां पे। हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग पे हम बहुत ज्यादा जोर देंगे कि बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करके उसके मुताबिक वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और उसको उसके मुताबिक तैयार किया जाए, और उसके बाद इंडस्ट्री के साथ हम अच्छा रिलेशनशिप पैदा करके उनको नौकरियां दिलवा सके। ये हमारा ज्यादा जो है ना एम्फेसिस होगा। ये मैं एक एडिशनल बात अपने वो दोस्तों की सारी बातों रिपीट करने की बजाय मैं एडिशनल ये गुजारिश कर रहा हूं।
और कुछ खास बात जो आप समझते हैं कि यहाँ आप अगर ना आते तो आपको ना पता लगती, इसके अलावा जो आप
यहाँ आके हमें बहुत ज्यादा जो एक चीज की क्लैरिटी हुई है ना, कि ये जो यूएस पीपल है ना, स्टेट्स के लोग हैं, इनके हमारे बारे में जहन बहुत खुले, और हमारी डीलिंग से इनको भी पता चला कि हम हमारे भी जेन बड़े खुले और ये हमें तो ऐसे डील करें जस्ट लाइक देयर फैमिली मेंबर्स। हमारे मेंटर्स बने हुए हैं, वो एक वीकेंड पे हमें अपने घर लेके गए और उस फैमिली पूरी ने हमारे साथ पूरा दिन गुजारा, खाना दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि इनका अखलाक, इनकी वर्किंग, उससे हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। हमारे यहाँ इतना अच्छा इम्प्रेशन उस तरह नहीं मिलता पब्लिकली जितना आके डायरेक्ट ऑब्जर्व करने से मिला, और इनको भी इतना इम्प्रेशन नहीं मिलता जितना इन्होंने हमारे साथ डील करके इनको मिला।
यही इन एक्सचेंज प्रोग्रामों का फायदा है,
ये मेन मकसद जो है ना इसको, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल में इसको ये तीन प्रोग्राम्स पे रखने की बजाय, और आई होप कि जिस तरह इनको फीडबैक मिल रही है ना, मुझे उम्मीद है कि इसको ये आगे बढ़ाएंगे और इसको ये कंटिन्यू करेंगे। इससे दोनों मुल्कों को बहुत फायदा है, इन लोगों को भी बहुत अच्छी इनपुट मिल रही है हमारे लोगों से, एक एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहे हैं और हम भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं।
और जो कुछ आप सीख रहे हैं आप समझते हैं कि वो बहुत फायदा मंद होगा आपके लिए भी और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी।
एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। आप देखें ना, एक बात है कि एक बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसको हम डे वन से उसकी प्रॉपर काउंसलिंग शुरू करें, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना, तुम्हारा ये फ्यूचर है, और उसको नौकरी तक दिलवा दें, तो ये एक 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 बंदे को नौकरी दिलवाने से एक लाइफ चेंज करनी है, एक फैमिली सेट होनी है, एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
बिल्कुल। अच्छा, और खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि अमेरिकी जिंदगी का और कौन सा सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छा लगा?
बहुत वेल मैनर्ड हैं, खुश अखलाक हैं, पंक्चुअल हैं और अपने मुल्क से कमिटेड हैं।
ये चीज आपको इनकी बहुत पसंद आई?
जी।
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया अख्तर अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी के सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं अमेरिका के दौरे पर आए पाकिस्तान भर से टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी या टेप्टा के सीनियर अहदेदारों के एक ग्रुप के कुछ नुमाइंदा अहदेदार, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या CCA से मुतालिक 6 हफ्तों के एक ट्रेनिंग कोर्स पर अमेरिका के दौरे पर हैं। हमारे मेहमान हैं सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर और इस ग्रुप के लीडर डॉक्टर मसरूर अहमद। हमारे मेहमान हैं पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के जनरल मैनेजर मोहम्मद अख्तर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर मोहम्मद दुल्ला। बलोचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग मकबूल अहमद। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के रुकन और प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल मोहम्मद जावेद इकबाल। हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahezindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारे सभी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स से टेलीफोन पर हमारे साथ। तो गुफ्तगू में आप शामिल कर रहे हैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल PVTC के जावेद इकबाल को, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल पंजाब के प्रिंसिपल हैं और इदारे के इंतजामी निसाबी और मालियाती उम्र के भी जिम्मेदार हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हैं, टीचर इंस्ट्रक्टर ट्रेनर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया है मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में और इस वक्त डिस्टेंट लर्निंग के जरिए MPhil भी कर रहे हैं। तो कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को जावेद इकबाल साहब कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल है जिसके आप प्रिंसिपल हैं, वहाँ क्या क्या खास ऐसी तरबियत दी जा रही है जो कि दूसरे इदारों में मौजूद नहीं है?
ये बुनियादी तौर पर एक डिफरेंट सेटअप था पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो 1998 में बनाया गया। ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बनवाया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब असेंबली में 1998 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ, जिसके पीछे बुनियादी फलसफा ये था कि लोगों को जो एक मुस्लिम फिलंथ्रोपी हमारे पास मौजूद होती है ज़कात की फॉर्म में, कि हर शख्स ने एक साल के बाद अपने जितने भी उसके पास पैसे होते हैं उसमें से 2.5% यानी उसका 40वां हिस्सा ज़कात की सूरत में देना होता है। पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स को ज़कात देते थे, वो एक माह बाद उसी ज़कात को कंज्यूम करके आ जाते थे फिर दोबारा ज़कात लेने के लिए, और सेल्फ सफिशियंट नहीं होते थे। बुनियादी फलसफा ये था کہ ان کو سیلف سفیشینٹ کیا جائے اور زکات کے اماؤنٹ کو یوز کیا جائے ان کو اسکل سکھانے میں تاکہ وہ ادھر امپلائڈ ہو سکے یا سیلف امپلائڈ ہو سکے. تو 1998 میں اس فلسفی پہ یہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل بنائی گئی. تو اس وقت ان کا ایک انسٹیٹیوشن تھا جہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا. اب پنجاب میں ان کے 223 انسٹیٹیوشن ہیں جہاں پہ وہ اس وقت ان کی ٹریننگ کیپیسٹی جو ہمارے پورے سسٹم کی ہے وہ 130,000 ہے. اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانے وال ان 223 انسٹیٹیوشن میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں ہم موسٹلی اس یوتھ کو کیٹر کرتے ہیں جو اسکول ڈراپ آؤٹ ہے, جو انڈر پریویلیجڈ لاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے. ہم ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے کورسز میں, ان کو 6 مہینے سے سال تک کے وہ کورسز کرواتے ہیں جن کی ہماری مارکیٹ میں ضرورت ہوتی ہے, مارکیٹ ڈریون کورسز. فار ایگزامپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانے وال میں ہم موٹر سائیکل میکینک, کمپیوٹر آپریٹر, کلینیکل اسسٹنٹ, ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ, ہارڈ ویئر, الیکٹریکل اور خواتین کے لیے ڈریس میکنگ, بیوٹیشن اور کمپیوٹر کے کورسز آفر کر رہے ہیں. اس کو اب تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں. لیکن جو ٹیپٹاس بنے تھے ان کا بیسک تھیم یہ تھا کہ ان لوگوں کو کیٹر کیا جائے جو فیس دے سکے, اور ہمارا بنیادی تھیم وہ تھا کہ جو لوگ فیس نہیں دے سکتے ان کو کیٹر کیا جائے.
اچھا, تو یہ نمایاں فرق ہو گیا نا. تو جو دوسرے ادارے ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے, وہ بھی اسی تھیم کے تحت چل رہے ہیں اسی؟
جی, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کے اندر ود ان پنجاب جو 223 انسٹیٹیوشن ہیں ان کا تھیم یہی ہے.
اچھا اچھا, تو لیکن یہ باقی صوبوں میں یہ کاؤنسل نہیں ہے؟
باقی صوبوں میں یہ کاؤنسل نہیں ہے, لیکن وہاں جو ٹیپٹاز ہیں ان کی کچھ اسٹریمس ایسی ہیں جو کیٹر کر رہی ہیں ان لوگوں کو جو انڈر پریویلیجڈ ہیں, اور ان کو ان کولیبریشن ود دا گورنمنٹ آف پاکستان اور سم این جی اوز یا جو اسکل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہیں مختلف صوبوں میں, تو ان کے تام ان سے وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن وہ فلی اس ٹیم پہ کام نہیں کر رہے.
تو آپ کے جو خانے وال کالج ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں کتنے اسٹوڈینٹس ہیں اس وقت؟
اس وقت اس میں 350 کے قریب اسٹوڈینٹس ہیں.
اچھا, اور لڑکیاں بھی ہیں؟ لڑکیاں بھی ہیں اس میں؟
جی, اس میں لڑکیاں بھی ہیں. ہم نے ریسنٹلی کچھ ایکسپینشن کی ہے, تو ہم نے فیمیلس کے لیے ایک ایکسکلوسیو کیمپس بنایا ہے.
اچھا,
جس کے اندر جی جس میں 180 فیمیلس ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے ساتھ سبرب سے جو ولیج ایریاز سے ان کے اندر بھی ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کے سیٹلائٹ کیمپسز بنائے.
سیٹلائٹ کیمپس کا مطلب؟
سیٹلائٹ کیمپس کا مطلب کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو ود ان خانے وال ہی ہوگا, لیکن ہمارے اس کیمپس کے اندر وہاں ٹیچر ہوں گے جو ٹیچ کر رہے ہوں گے, ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز سب کے سب جو ہیں ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ود ان خانے وال اس کے ہوں گے. پرنسپل ایک ہی ہوگا خانے وال کے اندر, اور وہاں پہ صرف اسٹوڈینٹ اور ٹیچرس ہوں گے.
سیٹلائٹ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ؟
نہیں, سیٹلائٹ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہمارا مین کیمپس ہے جہاں پہ ہمارا تمام ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور اکیڈیمک کام ہوتا ہے. سیٹلائٹ کیمپس سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے سے 20 کلومیٹرس پہ, 25 کلومیٹرس پہ, 40-50 کلومیٹرس پہ ایک گاؤں ہے جہاں سے بچے بچیاں ٹریول کر کے نہیں آ سکتے میرے پاس. تو ہم وہاں پہ ایک بلڈنگ لے کر تو وہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں جہاں پہ ٹیچرس ٹیچ کر رہے ہیں اور اسٹوڈینٹ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں ایڈمنسٹریشن وہاں پہ نہیں ہے, وہ یہاں سے سیٹلائٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہو رہی ہے.
صحیح صحیح, تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ لوگ خود چل کر وہاں تک پہنچ رہے ہیں, جو آپ تک نہیں آ سکتے آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں. بہت اچھے. اب یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس ٹریننگ میں, سب لوگ بہت سینئرز ہیں, تو اب ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے یہاں کیا سیکھا, تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ تو پہلے ہی بہت کچھ جانتے تھے یہاں؟
دیئر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور لرننگ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا, اور جتنے بندہ لرننگ میں زیادہ آگے چلا جاتا ہے تو لرننگ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو کراس کلچرل پرسپیکٹو ہے ووکیشنل اور کمیونٹی کالج کے ٹریننگ کا, وہ تھیوریٹیکلی تو ہمیں معلوم تھا, لیکن پریکٹیکلی ہم نے یہاں آ کے دیکھ لیا ہے اس کو, کہ فرسٹ ہینڈ نالج ہمیں ملا کہ یہ لوگ اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں.
یہ اب آپ کو یہاں کی جو چیزیں, جو ان کا جو کرنے کا انداز ہے وہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے, اور آپ جا کر کوشش کریں گے کہ اس کو اس میں ایڈ کریں جو آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں.
بالکل ایسا ہی.
اچھا, آپ نے کن کن ٹیکنیکل اداروں کا ابھی تک دورہ کیا ہے, اور وہاں کا ماحول آپ, اگر میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھوں گے پنجاب کے جو ٹیکنیکل اداروں سے کس طرح مختلف ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟
اچھا, اس میں ہمارا جو بنیادی طور پہ ہوسٹ ادارہ ہے وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہولیوک کمیونٹی کالج جہاں ہمارے زیادہ وزٹس ہوئے ہیں. ہولیوک کمیونٹی کالج کے علاوہ یونیورسٹی آف میسچیوسٹس جہاں پہ ٹیکنیکل کالجز کے لوگ کریڈٹ ٹرانسفر کروا کے جاتے ہیں. سمتھ ووکیشنل کالج کا ہم نے کیا ہے, بوسٹن میں راکسبری کالج ہے, اسپرنگ فیلڈ کالج ہے, اور ایک دو اور کالجز ہیں جہاں کا ہم نے دورہ کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے یہاں کی چیزیں سیکھنے کی, وہاں جا کے امپلیمنٹ کرنے کی, کچھ چیزیں امپلیمنٹیبل ہیں. ایڈمنسٹریشن ہے, گڈ پریکٹسز ہیں, ٹیچنگ پریکٹسز ہیں, آڈیو ویژول ایڈز ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پریکٹس ہو سکتی ہیں. کچھ چیزیں اسپیشلائزڈ ہیں فار دیئر کلچر جو وہاں پریکٹس نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل دے ہیو گاٹ اے ویری ہیوج کالجز, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, ہمارے کالجز کا انفراسٹرکچر کم ہے. تو جو بڑے کالجز کے لیے چیزیں چاہیے دے ہیو گاٹ اٹ, تو ہم وہاں پہ کاپی نہیں کر سکتے. بٹ دیر آر سو مینی تھنگس جو ہم نے یہاں سے گڈ ٹیچنگ پریکٹسز اور باقی چیزیں سیکھی ہیں, تو ہم جا کر کوشش کریں گے کہ وہاں جا کے امپلیمنٹ کریں.
یہ پروگرام جو ہے یہ کتنا, ایک پروگرام اور باقی ہے یا یہ کنٹینیو رہیں گے یہ پروگرامز؟
اس میں جو انیشیلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے دیا تھا ایڈورٹیزمنٹ اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ, وہ تین پروگرامز کے لیے تھا, فال 15, سپرنگ 16 اینڈ سپرنگ اپنا فال 16. لیکن اس کے بعد اگر یو ایس کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اس کو سمجھتا ہے کہ سکسیسفل ہوا ہے اور وہ اسے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے گا, اور ہوپ فلی کنٹینیو ہو جائے گا. بٹ ایٹ پریزنٹ جو سچویشن ہے صرف ایک پروگرام رہ گیا.
اور اس میں کون لوگ آئیں گے جو اگلا بیچ ہوگا؟
اگلے بیچ میں بھی یہی لوگ آئیں گے جو پاکستان میں ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں, جو ان کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں اپیکس باڈیز کے اندر جو کام کر رہے ہیں, اسی قسم کے لوگ اس میں دن چلائیں گے.
اچھا, بریکی زندگی کے مختلف سسٹمز آپ نے دیکھے اپنے اس ٹیکنیکل سسٹم کے علاوہ, تو کون سا سسٹم آپ کو سب سے اچھا لگا جو آپ چاہیں گے کہ پاکستان جائیں تو آپ وہ مل جائے وہ سسٹم؟
یہاں جو ڈائیورسٹی ہے, ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, کہ یہاں بہت ڈائیورس قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہاں کے نیٹوز ہیں, آئرلینڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اسپینش ہیں, اور بہت ڈائیورس قسم کا یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ڈائیورسٹی ایک قسم کی بیوٹی ہے, اور یہ نیچرل سیٹنگ ہے, اس کو ہم کاپی نہیں کر سکتے پاکستان میں, نہ ہی ہو سکتی ہے. پاکستان میں ڈائیورسٹی کسی اور صورت میں نو ڈاؤٹ موجود ہے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, پنکچوئل ہیں. ہم لوگ بھی اپنے طور پہ ہیں, لیکن یہ ہم سے تھوڑے سے زیادہ ہیں, اور ہم اس چیز کو اپنے پاس کاپی کر سکتے ہیں کہ ان کا کرٹیس ہے, اور ان کی جو کرٹیسی ہے, ان کی پنکچویلٹی ہے, ان کی ڈیڈیکیشن ہے, اور سب سے بڑھ کے دے ہیو گاٹ اے لو فار ایجوکیشن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس چیز کو ہمیں ایز اے ویلیو اڈاپٹ کرتے ہوئے بہت عرصہ لگے گا, لیکن جو لوگ میرے کولیگس ہیں, جو میرے اسٹوڈینٹس ہیں, ان کو میں جا کے یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکنز اگر سکسیسفل ہیں تو اس کے پیچھے دو تین ایلیمنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جس میں سے ایک ان کا لو ہے ایجوکیشن کے لیے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے.
تو کوئی خاص بات جسے آپ کبھی بھلا نہیں پائیں گے اس دورے کی؟
ویسے تو بینگ ان یو ایس از ان اٹسیلف اسپیشل تھنگ, تو اس میں کوئی خاص انسیڈنٹ کو یاد کر کے اس وقت شاید نہ بتا پاؤں.
ایک جنرل سا تاثر یہ کہ پورا دورہ آپ کا خوشگوار گزرا.
جی بالکل,
بہت شکریہ جاوید بال صاحب, آپ نے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل پی وی ٹی سی کے بارے میں بتایا ہمارے سننے والوں کو, اور یہ بتایا کہ پنجاب میں اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اور ووکیشنل ایجوکیشن کی کیا حالت ہے, کیا حالات ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر مسرور احمد کو ایک بار پھر پروگرام میں دعوت دیں. ڈاکٹر مسرور احمد, آپ کیونکہ اس پورے گروپ کے لیڈر ہیں, تو آپ سم اپ کیجیے اس دورے کو کہ یہ دورہ جو ہے اوور آل کیسا رہا, مزید ایسے دوروں کی کتنی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں بہتری آ سکے.
سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے یہ دورہ بہت ہی کامیاب ہے. انشاءاللہ ہم کو یو ایس پاکستان کی فرینڈ شپ کو اسٹرینتھن کرے گا یہ دورہ اور زیادہ. یقیناً جو اس دورہ کی وجہ سے یہاں کے کمیونٹی کالجز سسٹم جو یو ایس کا ہے, اس کا ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا سسٹم جو پاکستان میں, ان کا لنکیجز آپس میں ڈیولپ ہوگا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سیکنڈ گروپ ابھی آیا ہے ڈیبٹ کے حوالے سے, اور یو ایس اے کے بھی جو کمیونٹی کالجز کے لوگ جو ہیں اس کے فالو اپ میں جو ہے وزٹ کریں گے اور وہ پاکستان جائیں گے, تو یقیناً یہ اسٹرینتھن کرے گا ہماری ٹائز اور جو ریلیشن شپ کو اور زیادہ. ایک تو یہ چیز ہے, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو فلیکسیبل ٹیبلٹ کا سسٹم ہے یا کمیونٹی کالجز کا سسٹم ہے, اس کے حوالے سے پاکستان میں بھی یقیناً جا کے ہم اور جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے وہ یقیناً کوشش کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام گروپس کے ممبر جو ہیں, ہمارے جتنے بھی گروپ کے ممبر ہیں, ہر کسی کو ایک ایکشن پلان جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گروپ میں جا کے کم از کم ایک ایکٹیویٹی کرے گا, اس کا ایکشن پلان ہم یہاں ساتھ بنا رہے ہیں ابھی بیٹھ کے, اور ہر کوئی ये जो मेंबर है वो एक एक प्रोजेक्ट जो है अपनी जगह लेके जाएगा और उस प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी कंप्लीट यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। तो यकीनन ये इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ हम सीख रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में हम अपने सिस्टम में करेंगे। जाहिर है ये तो नहीं आइडियल नहीं होता कि कोई चीज़ आप ले जाके यहाँ से कहीं से ले जाकर दूसरी जगह इम्प्लांट कर दें, क्योंकि जाहिर है वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो पोजिशन है, या गवर्नमेंट ने, या जहाँ लोगों का जो अपना एक सोशल स्टेटस है या उनकी जो जॉब करने की हैबिट्स हैं, तो वो पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। और यहाँ फिर गवर्नमेंट जिस तरह सपोर्ट कर रही है ये कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम को, यकीन वो सपोर्ट भी पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन वो चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने सेटिंग में उसी सूरत में इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिकल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। और अब तो जो गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव प्लान्स हैं उनमें जो है गवर्नमेंट ने टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग ना सिर्फ फ्री कर दी है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे जो है वो बच्चों को स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। और वो ये कि बच्चा किसी पॉलिटेक्निक या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए, फ्री स्किल भी हासिल करें, साथ में उसको 2,500 रुपये महीना तक की स्टाइपेंड भी दी जा रही है। इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग के। इस तरह हमारा नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन जो है इस्लामाबाद में, वो भी इस तरह की स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है जो कि फ्री ट्रेनिंग हासिल करें बच्चे, और साथ में जो है उनको 2,500 रुपये महीने की स्टाइपेंड भी है और कोर्स ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो टूल किट भी है। सिंध में खासतौर से बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है इसी पैटर्न पे, और वो भी जो है 3 से लेके 6 महीने के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और वो फ्री ट्रेनिंग है। उसमें बच्चों को 3 महीने की मतलब 2,500 रुपये स्टाइपेंड भी दी जाती है और साथ में टूल किट भी दी जाती है। तो ये है एक हमारा एडवांटेज कि टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री है। बाहर क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से इश्यूज हैं जो कि यकीनन हमें इम्प्रूव कर रहे हैं और करने चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर है इनके मुकाबले में अच्छा नहीं है इतना। यहाँ पे जाहिर नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा कि हमने यहाँ जो है इस पे कॉलेज में या दूसरी जगह है सीएनसी मशीन्स देखें लैब्स में, जो कि ऑटो शॉप्स वगैरह में और जो है मैन्युफैक्चरिंग के लैब में वो अवेलेबल है। हमारे यहाँ सीएनसी मशीन अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारों में नजर नहीं आती, जाहिर है क्योंकि ये हमारे यहाँ इदारों में इक्विपमेंट मशीनरी रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं होता, और जब इदारे एक बार बनते हैं तो इक्विपमेंट मशीनरी आता है और उसके बाद फिर वो रिप्लेस नहीं हो पाता, इसलिए कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं अवेलेबल करती। तो ज़्यादातर इदारों में जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो पुरानी इक्विपमेंट मशीनरी हैं।
तो हम तवक्को करेंगे कि जो ये जो 22 लोग आए हैं इतना कुछ सीख कर यहाँ से जा रहे हैं, जो इनसाइट आप लोगों में डेवलप हुई है यहाँ के दौरे से, वो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आपके निज़ाम में, आपके इदारों में आप उसको नाफिज करके रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, अपनी आँखों से सब कुछ जायज़ा लिया है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर मसरूर अहमद साहब, और बेहद शुक्रिया आपके तमाम ग्रुप का जिसने हमारे इस प्रोग्राम हरदम रवा है ज़िंदगी के सुनने वालों के लिए अपने बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। यकीनन हमारे सुनने वालों को आपकी गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा होगा। प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हम अपने सुनने वालों को बता देते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान थे वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है ज़िंदगी में। हमारे आज के मेहमान थे अमेरिका के दौरे पर आए पाकिस्तान भर से टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी या टेप्टा के सीनियर अहदेदारों के एक ग्रुप के कुछ नुमाइंदा अहदेदार, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जेरे एहतमाम कम्युनिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या CCA से मुतालिक 6 हफ्तों के एक ट्रेनिंग कोर्स पर अमेरिका के दौरे पर हैं। हमारे मेहमान थे सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर और इस ग्रुप के लीडर डॉक्टर मसरूर अहमद। हमारे मेहमान थे पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के जनरल मैनेजर मोहम्मद अख्तर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर मोहम्मद दुल्ला। बलोचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग
مقبول احمد۔ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے رکن اور پرنسپل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال محمد جاوید اقبال۔ ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔